रामायण में एक चौपाई आती है, सुख हर खई जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरई मन माही। जो जड़ बुद्धि जीव है या जो अज्ञानी है वो सुख में प्रसन्न होता है और दुख में बेचैन रहता है, लेकिन जो धीर पुरुष है, जो धर्मवान पुरुष है, वो दोनों हालतों में सम रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य ने ऐसे रास्ते पर चलना है जहां उसके जीवन में सुख और दुख एक समान हो जाए। और यदि किसी भी सांसारिक तरीके से, संसारी सोच के हिसाब से यदि आप इस बात पर निर्णय करना चाहें या इस बात पर अमल करना चाहें तो ये बिल्कुल असंभव बात लगती है कि दुख सुख में तो हमेशा ही डिफरेंस रहेगा, दोनों एक हो ही नहीं सकते। इसलिए इस मिस्ट्री को तो आप बिना अध्यात्म के हल कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो हमको अपने बारे में ही एक गलत बड़ी गलत फहमी है कि मैं शरीर हूं। और संसारियों को यदि मैं देखूं, उनसे बातचीत करूं, तो वो कभी भी इससे ऊपर उठ ही नहीं सकते कि मैं शरीर हूं। हमेशा अपने आप को शरीर बनकर ही जीवन जीते हैं और उसी के कारण वो जीवन में सुखी दुखी होते रहते हैं। तो ये बात तो अध्यात्म में सिखाई जाती है कि तू जीव है जो इस देह के द्वारा जीवन जी रहा है। हम सांसारिक जीवन ही तो जी रहे हैं, जो सांसारिक तरीके से जीवन जीता वो सांसारिक जीवन हो गया, जो शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीता है वो आध्यात्मिक जीवन हो गया। तो दो जीवन के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है, क्योंकि समझ ही दोनों बिल्कुल अलग है। एक समझ हमको कह रही है कि मैं जीव हूं जिसको ये देह मिली है, और दूसरा कहता है कि मैं देह हूं जिसको ये जीवन मिला है। निर्णय में बिल्कुल उल्टा है। तो इसीलिए जब तक आपका अध्यात्म पर विश्वास ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन भी जीने का सही रास्ता है, ये विश्वास ही नहीं है, तब आप इस मर्यादावादी बात को आप जीवन में अमल में ला ही नहीं सकते। ये असंभव बात है बिल्कुल। ये मर्यादा का जीवन ये उनके लिए है जिनको इस बात की समझ है कि मैं इस देह के बंधन में कितने जन्मों से फंसा हुआ हूं। और ये मनुष्य जन्म ईश्वर ने केवल इस वास्ते दिया है कि मैं इस रहस्य को समझ लूं और इस देह को जो जीवन देने वाली सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसकी खोज मैं इस देह के अंदर ही कर लूं। जो इस देह के अंदर उस चेतन सत्ता की खोज करता है या ईश्वर की खोज करता है या आत्मा की खोज करता है, उसी व्यक्ति को धीर पुरुष कहते हैं, उसी व्यक्ति को धर्मवान पुरुष कहते हैं। और दुनिया में कोई धर्मवान नहीं होता, याद रखिए। चाहे आप जितनी भी परिभाषाएं आपने बना रखी हो धर्म की और धर्मवान की, एक भी शास्त्र पर फिट नहीं बैठती, वो आपकी जैसे संसार की निश्चय बना रखे हैं, ऐसे धर्म भी आपने संसारी बना रखे हैं, उसका वास्तविक धर्म से दूर दूर तक 1% भी लेन देना कुछ भी नहीं। ये सीधा सा मार्ग है। सबसे पहले अपने बारे में समझ, मैं कौन हूँ, फिर दूसरी समझ कि ईश्वर का मेरे जीवन में क्या रोल है, और ये मानव जन्म मिला है किस वास्ते मिला है। तो इसलिए महाजी की वाणी तो बड़ा स्पष्ट कर रही है, मानुष जन्म सुफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए। ये साधारण योनि नहीं है मानव जन्म की, ये दुर्लभ योनि है। दुर्लभ का मतलब है रेयर चीज है। आप कहोगे इतने तो सब पैदा हो गए, असंख्य है ये मनुष्य। तो यदि आप इसका निर्णय करना चाहें तो महाजी की वाणी, फिर समता प्रकाश की वाणी भी इसके बारे में निर्णय कर रही है कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो खोई। इनके लिए जो टाइटल दिया जा सकता है मनुष्य के लिए, ये पशु नर है। ये देखने में तो नर है, देखने में तो मनुष्य है, क्योंकि शरीर इनका मनुष्य का है, लेकिन ये स्वभाव से पशु है। कि इनको अपना होश ही नहीं है कि मैं कौन हूं, ये मानव देह मुझको क्यों मिली है। हर प्रकार के दुख से 100% छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिली है। और जो वेज एंड मीन्स, जो तरीके हमने संसार में जीने के बना रखे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज मेरी हाफ सेंचुरी बीत गई जीवन की, लेकिन आज तक मैं अपने दुखों का इलाज नहीं कर पाया। एंटायर वर्ल्ड कंप्लीटली फेल है इस मामले में, उसके पास दुखों का इलाज है ही नहीं। तो मनुष्य जन्म इस दुख रूपी रोग से परमानेंट छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिला है। और संसार में जो कुछ भी आप जानते हो, सब टेस्ट करके देख लो, क्या संसार में किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा साधन है जिससे मनुष्य के दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। टेम्परेरी खत्म होते हैं, फिर आ जाते हैं, एक रूप से खत्म होते हैं, दूसरे रूप से आ जाते हैं। तो बताइए, संसार में जब कोई आज तक ऐसा मेथड बना ही नहीं कि मनुष्य के दुख दूर हो जाए, तो फिर इस संसार में मुझको मिलेगा क्या? तो ऐसे ही होगा, व्यक्ति लाल रंग पहनने से बोर हो गया, उन्होंने कि सफेद अच्छा है, इसमें बड़ी शांति है, सफेद पहनना शुरू कर दिया उसने। कुछ दिन बाद उससे भी बोर हो जाएगा, कहेगा भाई शांति मिली नहीं सफेद पैसे, अब तो भाई नीला रंग पहनेंगे हम। जैसे आदमी एक चीज से बोर हो जाता है, फिर दूसरा अपना लेता है। तो यही है कि जिस चीज को भी टेस्ट करता है, देखता है इससे मानसिक बेचैनी मेरी खत्म नहीं हुई। तो इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी संसार की चकाचौंध देखकर ये मनुष्य अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, और जो अंतर्यामी ईश्वर है, जो सुख का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो शांति का सागर है, उसको भूला रहता है। इसीलिए प्रभु ही हैं जो हमारे दुख को समझते, वो अंतर्यामी है ना। इसलिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, सही सोच देने के लिए, वो गुरु रूप में अवतार लेते हैं, अवतार लेकर शास्त्रों की रचना करते हैं, जीवन चल के बताते हैं कि कैसे संसार में चला जाए। तब हम ऐसे किसी गुरु पर, जो हमारा फेथ आता है इस पर, उसके जीवन के प्रति श्रद्धा हमारे मन में जागृत होती है, तब उसकी बातों को हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसके अनुसार जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने गुरु इसलिए धारण किया है कि संसार से मैं परेशान हूँ, संसार में इस बेचैनी से मुक्त होने का मुझको कोई भी साधन नजर नहीं आता। नजर आए कहां से, है ही नहीं संसार में साधन। तो यदि हम इस प्रकृति चक्र के बेसिक से ही समझ लें, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, वहीं से ये बात क्लियर हो जाएगी, संसार में तो आपके दुख का उपाय है ही नहीं। जब से संसार बना और जब तक बना रहेगा, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। मनुष्य ने यहां पर बेचैनी लेकर ही जीवन जीना है, और बेचैनी लेकर ही मर जाना है, क्योंकि सारा जो प्रकृति का विधान है वो तो तीन गुणों से युक्त है। जिसको कह रहे हैं वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण कहते हैं इनर्शिया को, जड़ता को, जो चीज जैसी है वैसी ही बनी रहनी चाहती है। इसीलिए जो जड़ मनुष्य है, तो जिसके अंदर बुद्धि में जड़ता है, आप देखोगे जहां पड़ा हुआ है आपने, उसको भविष्य का होश ही नहीं, जो मन चाहा कर ले रहा है अपने, कितने ऐब उसके अंदर इकट्ठे हो गए, उसको होश ही नहीं है ऐबों का, मेरा क्या हल करेंगे भविष्य में है। तो जड़ता क्या है कि जो चीज जहां है वैसी ही बनी रहनी चाहती है। आलस उसका, आलस और प्रमाद जो है ये उसकी पहचान है बेसिक्स में। लेकिन एक दूसरा प्रकृति में गुण है रजोगुण। रजोगुण क्या है कि ये निरंतर चेंज चाहती है। जैसे एक्टिव मनुष्य होते हैं ना संसार में, ज्यादातर मनुष्य आपको आजकल एक्टिव मिलेंगे शहरों में, ये रजोगुण है कि उस जड़ता को छोड़कर ये चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जिसको ये प्रगति कहते हैं कि निरंतर मैं प्रगति करता रहूं। नहीं, चेंजेस आती रहे, निरंतर चेंज होती रहे, चाहे कमाई के मामले में हो, चाहे फैशन के मामले में हो, चाहे खाने पीने के मामले में हो, चाहे बिल्डिंग बनाने के मामले में, हर चीज में निरंतर चेंज चाहिए उसको। ये रजोगुण है, ये केवल मनुष्य के अंदर काम नहीं कर रहा है, ये हर कणकण के अंदर काम कर रहा है, ये पूरी प्रकृति इन गुणों से युक्त है। इसलिए आप देखते होंगे कोई वस्तु आप बनाइए तो वो वैसी ही आप चाहोगे वैसी ही बनी रहे जैसी बनाई है, और वस्तु भी वैसी ही बनी रहनी चाहती है। लेकिन जिस दिन वो बन के तैयार होती है, उसी दिन से, उसी क्षण से उसके अंदर चेंजेस प्रारंभ हो जाते हैं, इंटरनल चेंजेस उसके अंदर प्रारंभ हो जाती हैं, जिसको हम एजिंग इफेक्ट दे देते हैं जड़ वस्तु को। तो ये निरंतर जो चेंजेस हैं ये रजोगुण है, और तीसरा क्या है सतोगुण प्रकृति के अंदर है, वो मेरे अंदर भी है कि मैं किसी भी चीज से, किसी भी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता, हर स्थिति को मैं ट्रांसेंड करना चाहता हूं, पार करना चाहता हूं, उससे ऊपर उठना चाहता हूं, और ये प्यास मेरी कभी खत्म नहीं होती, ये सतोगुण है। इसीलिए बड़े बड़े अच्छे भक्त भी देखे होंगे, बड़े बड़े अच्छे साधक भी देखे होंगे जिनके अंदर ईश्वर का बड़ा प्रेम है, लेकिन उस प्रेम से संतोष नहीं होता उनको, वो निरंतर और गहरा प्रेम होना चाहिए, और गहरा प्रेम होना चाहिए, और गहरा प्रेम होना चाहिए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वो तड़पता ही रहता है, लेकिन ये सतोगुण है तो हर स्थिति से वो ट्रांसेंड करना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, ये उसका असली विकास है। तो ये प्यास खत्म कहां होती है, जहां ये तीन गुणों से ऊपर उठकर जो हां निर्गुण अवस्था है, जिसको हम आत्म स्थिति कहते हैं या जिसको हम ईश्वर दर्शन कहते हैं, वहां पहुंचकर इस जीव यह परमानेंट क्लेश से मुक्त होता है, इन तीन गुणों के बंधन से मुक्त होता है, वो स्थिर अवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं। तो इसीलिए पूरे प्रकृति का सिद्धांत यदि हम वैदिक शास्त्रों से लेकर आज तक के जो कुछ भी लिखा गया है ध्यान से पढ़ें, सीखें उसको, तब पता लगेगा ये पूरा प्रकृति का चक्र ही ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि यहां मनुष्य को चैन कभी मिल ही नहीं सकता, चाहे मनुष्य कुछ भी क्यों ना कर ले। इसीलिए जो विधि शब्द है, विधि का मतलब ये होता है कि उजाड़ना, डिसरप्शन। तो ईश्वर का जो कानून है वास्तव में वो मुझको संसार से उजाड़ने के लिए आया है। तो गुरु ने आपको संसार में सुख देकर बसाना नहीं है, गुरु ने आपको संसार में दुख का ही दर्शन कराना है, जिंदगी की बर्बादी का ही दर्शन कराना है। नहीं तो ये बात संताविलास में लिखी क्यों होती, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। विचार करके तो देखिए, मैं कहां संसार में बच्चों को खुश करने की तैयारी कर रहा हूं, बड़े बड़े मैंने ख्वाब बना रखे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, मुझे होश ही नहीं है जिंदगी, संसार ही मेरा गुरु है। तो जब जो खुद डूब रहा है उसको आप गुरु बनाओगे तो तुम गुरु ले ही डूबेगा। जिसने संसार को गुरु बनाया है, संसार को देख के विकास जिसने सीखा है, उसने तो डूबना ही डूबना, उसे कौन बचा सकता है। इसलिए यदि कोई रक्षक आपका है पूरे संसार में, वो केवल गुरु है, याद रखिए, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, वही आपको संभाल सकता है, वही आपको सही दिशा निर्देश दे सकता है। अन्यथा पूरा संसार केवल आपको डुबोने की तैयारी कर रहा है। जिसको वो प्रगति कर रहे हैं वो आपको जल्दी डुबोने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम डिले मत करो, जल्दी डूब लो। क्योंकि सांसारिक विकास का मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी डूबना, गहरे से गहरे दुख में फंस जाना, उस चिंता में, गहरी चिंता में फंस जाना जहां से निकलना भी संभव नहीं होता। एक गरीब आदमी तो निकल आएगा, बड़ी आसानी से निकल आएगा, लेकिन अमीर आदमी जो युवा डूबा तो निकलेगा नहीं, वो तड़प तड़प के मरना। तो इसीलिए जब तक हमको प्रकृति का सिद्धांत का नहीं पता, अपने जीवन का नहीं पता कि मैं कौन हूं, मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, मृत्यु होती है तो मैं क्या साथ लेकर जाता हूं, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या कुछ बच भी जाता है, हर चीज का रिप्लाई मेरे पास चाहिए, तब संसार में मैंने कैसे जीना है इस बात का निर्णय हो पाएगा। नहीं तो इस बात का कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। महाजी का प्रेमी मर्यादा से जीवन में चलो, तो मैं तलाश करता रहूंगा मर्यादा कौन सी मैं हासिल करूं, कि संसार की दौड़ तो इतनी तेज है, सारी मर्यादाएं तोड़ रही। पहले तो घड़े का ठंडा पानी में काम चल जाता था, अब तो फ्रिज कंपल्सरी हो गया, गरीब के घर में ही फ्रिज चाहिए, तो मर्यादा का कौन सा मापदंड बनाओगे आप। पहले तो 10 पैसे के पोस्ट कार्ड से काम चल जाता था, आज मोबाइल कंपलसरी है, गरीब के पास ही मोबाइल चाहिए, ठेले वाले के पास ही मोबाइल चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलता। तो किस मर्यादा को बनाओगे आप। तो मर्यादा का शब्द उसके लिए है जिसने ईश्वर मार्ग पर चलना है, यह ध्यान रखिए। पहले आप जिसने अपनी जिंदगी के मर्म को समझा है, जिंदगी की तकलीफ को समझा है, मनुष्य की तकलीफ ऊपर सरफेस लेवल की नहीं है, ये बड़ी गहरी तकलीफ है इसको। और ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, इसमें निरंतर परिवर्तन होता है, एक गुण दूसरे में ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो रहा है, ये प्रकृति सिद्धांत है। क्योंकि मैं तो अपने अंदर कहूंगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति में कौन कर रहा है। 3 गुणों में तो सारी प्रकृति समाई हुई ना, क्योंकि जिस प्रकृति से ये संसार बना है उसी प्रकृति से मेरा शरीर भी तो बना है। मैं संसार का मेटेरियल और मेरे देह का मेटेरियल में कोई अंतर होगा ना। तो मेरे बॉडी के हर सेल की रचना भी संसार से ही तो हुई है, तो इस पर भी वही सिद्धांत तो लागू होता है। मैं जानता हूं कि मेरी देह जो है हर पल मौत की तरफ पैदा तो हो गई, पैदा होने के बाद हर पल ये मौत की तरफ जा रही है, और वो भी इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कभी भी पूरी खत्म हो सकती है। और आप लोग भी देखते हैं, आपके उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं देखते आप। कोई बड़ा चंचल स्वभाव का था, बड़े होकर तो वो साधु बन गया, बड़ा अच्छा इंसान हो गया, दुनिया की बड़ी सेवा करता है, लोगों के दुख दूर करता है, उसके अंदर ये सतोगुण कहां से आ गया। तो निरंतर परिवर्तन हो रहा ना, गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है। इसलिए महाजी कहते हैं कि प्रेमी आत्मदर्शी जो है उसको भी अलर्ट रहना चाहिए, उसका भी पतन संभव है। केवल आत्मलीन पूर्ण है वो गुरु बन सकता है, वो गाइड कर सकता है, क्योंकि उसमें चेंज संभव नहीं। को आत्मस्थित आत्मलीन हो गया ना, वो आत्मरूप हो गया, वो आत्मा जो है वो निर्गुण है, 3 गुणों से मुक्त है वो, तो 3 गुण तो बंधन में है। तो सोचिए जरा कि एक इतना ऊंचा उठ गया, गुरु कह रहा है कि उसका भी पतन संभव है, उसको भी गुरु बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु बनेगा तो अहंकार तो आ सकता है ना, फिर उसमें मैं गुरु हूं ये मेरा शिष्य, तो अहंकार तो माया है, वो नीचे ले आएगी। अब तो इसीलिए आज आप कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि अब मैं सुखी जीवन व्यतीत कर पाऊंगा, अब संसार में कष्ट मुझ पर नहीं आएंगे। आज ही सोचोगे कल ही आपकी शरीर की वो दशा हो सकती है कि दुखों से जीवन भर जाए आपका। तो संसार में आपके लिए कुछ भी करने के पश्चात भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जीवन कभी सुखी हो पाए, चिंता से मुक्त हो पाओगे। तो इसीलिए मैंने पहले ये निश्चय करना है कि मैंने जीवन संसारियों की नकल करके जीना है या गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीना है। मैं क्या हूं, कौन हूं, ये मैंने संसारियों से सीखना है या गुरु जो सब कुछ जानता है, सारे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है, उससे मैंने सीखना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मैंने जाना है। ये आपको केवल गुरु सिखाएगा क्योंकि वो पूर्ण है, उसकी बात कभी बदलती नहीं है। संसारियों की बातों में बदलाव होता रहता है, डाउनफॉल भी होता रहता है, इंप्रूवमेंट भी होता रहता है, लेकिन गुरु की जो बात है वो अटल सिद्धांत है। वो सारी प्रकृति का मालिक है। वो इसीलिए इसका निर्णय, मर्यादा का निर्णय तब हो पाएगा जब पहले आप ये समझ लें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जिस व्यक्ति ने इस देह के बंधन से छुटकारा पाना है, क्योंकि देह पता है मुझको नाशवान है और ये परिवर्तनशील है, आज स्वस्थ है, कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन करूं, कल को बीमार फिर भी हो जाएगी, और ऐसी बीमारी हो सकती है जो लाइलाज हो, तो मैं किस चीज की केयर करूंगा, किस चीज की तैयारी करूंगा। तो मर्यादा का खाना करके तो मैं ये समझूंगा मैं स्वस्थ रहूंगा, आप तो मर्यादा का खाना पीना खाता हूं मैं, करता हूं। तो मर्यादा में जीने के बाद भी तेरे दुख कम तो हो सकते हैं, क्योंकि सुख भोगने की लालसा जिसके अंदर कम पड़ गई तो दुख भी उसको कम भोगने पड़ेंगे, बेचैनी भी उसको कम भोगनी पड़ेगी। तो मर्यादा का जीवन आपको मीडियम स्टेज में तो ले जाएगा, लेकिन वो मर्यादा का जीवन इसलिए तुझको सिखाया जा रहा है कि तू अपने अंदर अटेंशन दे सके, उस ईश्वर सत्ता की ओर तू झुक सके, उसका स्मरण कर सके, उसके बारे में पढ़ाई कर सके, उसके बारे में जान सके। तो उसके लिए तुझे वक्त भी चाहिए, कुछ सामर्थ्य भी तो चाहिए, कुछ मन में चैन भी तो चाहिए। इतनी उलझने मन में भरी होंगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के, संसार में मैंने फैला लिया खूब सारा, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो बेचैनी मेरे मन में होगी वो क्या मन ईश्वर की तरफ जाएगा, वो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए महाराज जी सबसे पहले सिद्धांत दे रहे हैं, प्रेमी मर्यादा की बात तो बाद में आती है, सबसे पहली बात तो ये आती है तो जो गलतियां कर रहा है, सामाजिक रूप से भी गलतियां कर रहा है, समाज में बीमारियां होती है, नहीं होती, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, कमाई में भी हमारी खोट होता है, नहीं होता है, कहीं हम सरकार से चोरी करते हैं, कहीं हम समाज से चोरी करते हैं, 100 तरीके हैं हमारे। तो महाराज कह रहे हैं प्रेमी सबसे पहले तो जो तू जानता है कि तेरे जीवन में जो दोष है, सामाजिक दोष है, उनसे तू मुक्त हो। उसके पश्चात फिर बात आती है कि तू जो एक्शन में साफ सुथरा हो गया, अब तू अपनी सीमाओं को संकुचित कर, जीवन तू सादा बना, उसका कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची हुई है कि इस रेखा से इधर तो सादा जीवन है, उसके पार जो है बिगड़ा हुआ जीवन है, ऐसी कोई नहीं। कोई राजमहल में पैदा हुआ है तो हो सकता है सिंहासन में बैठेगा तो राजमुकुट भी पहनना पड़ेगा उसको। कोई कर्नल बना हुआ है तो कर्नल के हिसाब से सब उसको रखना पड़ेगा। तो मर्यादा का ऐसा मापदंड कोई भी नहीं है। मर्यादा का मतलब यह है तेरा कम से कम वस्तुओं में, कम से कम पैसे में, कम से कम एफर्ट में देह का गुजारा या तेरे परिवार का गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मर्यादा तूने खुद ही डिसाइड करनी है। गुरु ने उसकी कोई रेखा नहीं खींच रखी। अर्थात सांसारिक जीवन जो मैंने फैला रखा है इसमें सारा टाइम मेरा लग जा रहा है, इसमें जो बेशकीमती समय था वो ईश्वर मार्ग में अपने दुख दूर करने के लिए मैंने लगाना था, और बेहोशी में मैं जी रहा हूँ, संसारी को निकल करके मैंने फैला लिया संसार। दुख के बीज मैंने खुद ही बोलिए, बेचैनी मेरी प्लानिंग के कारण है, मेरे एग्जीक्यूशन के कारण है। प्रारब्ध तो जो है सो है ही, लेकिन बेचैनी के बीज मैंने खुद बोए हैं। तो इसीलिए ये जो मर्यादा है ये इस वास्ते है कि तेरा वक्त भी बच सके, तेरा जो मानसिक चिंतन हर समय संसार के लिए चलता रहता है उस मन के अंदर ईश्वर का चिंतन भी चल सके, और उस ईश्वर स्मरण के लिए तेरे पास वक्त भी बच सके। इसलिए माही कह रहे हैं, प्रेमी सबसे पहले तो ये दोषपूर्ण जीवन है इसको तो खत्म कर, फिर अपने जीवन सांसारिक जीवन में सादगी के साथ क्या तुझे जरूरी चाहिए उसकी तैयारी कर। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं, प्रेमी स्वार्थ कर्म की और परमार्थ की समय सीमा बांध। मान लिया तूने संसारी कर्म करके अपनी गृहस्थी का काम चलाना है तो 8 घंटे तो रख ले 24 घंटे में से, गवर्नमेंट का भी स्टैंडर्ड 8 घंटे का यह काम करने का। तो 8 घंटे में तो स्वार्थ कर्म करके परिवार का लाल पालन करने के लिए कमाई कर ले, जैसा तू चाहे, बेईमानी रहित लेकिन ईमानदारी से तो कमाई कर ले, पुरुषार्थ कर ले, और बाकी जो समय है कुछ घर के काम के लिए रख ले, और सुबह शाम सिमरन के लिए रख ले। तो उसके लिए महाराज जी ने समय सीमा तक निर्धारित कर ली, करती संता विलास में मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है वो, मिनिमम प्रोग्राम है कि इतना तो तुमने करना ही करना है, क्योंकि इस काम के लिए तुझको यह देह दी गई है, विचार करके तो देख, तू तो घोर संसारी हो गया, तुझे होश ही नहीं है। इसलिए कहता, अरे 1 घंटा सुबह कहां से लाऊंगा, 1 घंटा शाम कहां से लाऊंगा, तुझे जिंदगी का होश ही नहीं है, फिर तो ये कहेगा ही बात। गुरु तो तुझको होश में लाकर ये बात कह रहा है ना। तो जो मनुष्य होश में आ गया है अर्थात गुरु की बात को महत्व दे रहा है, वो समझ रहा है, वो फिर ये भी समझेगा कि महाराज जी ने क्यों लिखा कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है, क्योंकि गुरु तुमको दुखों से मुक्त करने आया है और संसार तुमको दुखों में फंसाने आया है, क्योंकि उनकी बुद्धि अज्ञानी है, सुख के ख्वाब दिखा रहे हैं, दुख में फंसा रहे हैं, यह संसार की रचना है। और गुरु के मार्गदर्शन पर जब चलोगे तो प्रारंभ में आपको ऐसा लगेगा गुरु मुझको दुख में फंसा रहा है, हर चीज तो मेरी कम कर दे रहा है वो, लेकिन वो उस परम आनंद की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है जो तेरी देह के अंदर ही मौजूद है, जिसको कहीं खोजना ही नहीं है तुझे, कहीं जाना ही नहीं है उसके लिए। वो परम आनंद जो गुरु के जीवन से खुद पता लग रहा है, महाराज की खुराक क्या थी, महाराज की नींद क्या थी, उनकी प्यास क्या थी, सब जानते हैं हम लोग, लेकिन समाधि को छोड़ना चाहते थे वो, प्रेमी चारों तरफ बैठे हुए हैं बात करने आए हैं, वो समाधि में चले गए। जहां प्रेमी साइलेंट हुए, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, कोई बात नहीं करी, वो समाधि में चले गए। वो उनकी सहज अवस्था थी। उस आनंद के बराबर संसार में कोई आनंद ही नहीं है, वो शांति का सागर है जहां वो स्थित है। और जो शिष्य सामने बैठे हैं, जो लोग सामने बैठे हैं, वो जानते हैं इनका जो मन है वो बेचैनी का सागर है, कहीं दूर दूर तक चैन है ही नहीं मन के अंदर। तो वो प्रेमी अपना अनुभव बताते थे कि महाराज जी के पास जब बैठते थे तो ऐसी शांति मिलती थी, ऐसा लगता था जैसे संकल्प तो गायब ही हो गए हमारे, सारे संसार की चेतन लेके आते थे लेकिन उनके पास बैठकर सारी चेतन हमारी खत्म हो जाती। तो क्या है गुरु के पास, विचार करके तो देखो। हम तो किसी अमीर घर में चले जाए, भाई अमीर घर तो सुख का घर है ना वो, आप देखोगे अमीर घर में जाकर आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, 25 चीजें देखोगे, अरे ये बड़ी सुंदर चीज़ है, काश मेरे घर में भी होती, मैं भी तलाश करूँगा, कम से कम डिज़ाइन तो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा डिज़ाइन मैं भी मार्केट में तलाश करूँगा, आके बेचैनी बढ़ जाएगी। गुरु के पास बैठकर चैन बढ़ रहा है। तो गुरु ने जो सिद्धांत आपके जीवन के लिए वो दे रहे हैं, वो तो जीवन में अमल में लाया है ना उन्होंने, और उस आनंद के दर्शन किए हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो आनंद ईश्वर में है। तो इसीलिए वहां निर्णय दे रहे हैं वो, देखो वाणी निर्णय दे रही है, हमें तो निर्णय देना पड़ेगा ना। कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। तो नाम गोविंद का कहां है, अंदर ही तो है। तो आनंद का सागर मेरी देह के अंदर मौजूद है, और बेचैनी का सागर देह के बाहर संसार में मौजूद है। तो मैं विकास कर रहा हूं संसार में, मुझको पता ही नहीं मैं बेचैनी की कमाई कर रहा हूं, मुझको ये पता ही नहीं इस बात का। और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जब चलता हूं, तो गुरु सारा प्रोग्राम जो बाहरी संसारी मुझको दे रहा है, वो अंदर जाने के लिए दे रहा है, वो उसका पर्पस ये है। आपके पास श्रवण के लिए वक्त ही नहीं है, श्रवण कैसे करोगे आप बताओ तो सही। आपको बड़ी इच्छा है मेरी, लेकिन अपने कर्म तो देखो, अपनी करनी तो देखो, तूने संसार के निकल करके क्या करने की, क्या लक्ष्य बनाया तूने, जिंदगी का इतना कीमती वक्त तूने कहां खर्च किया है, सोच के तो देख। तो जब तक मैं उस शास्त्र को पढ़ने की, उस पर मनन करने की गहराई से जरूरत ही नहीं समझता कभी, तो मुझको जो करनी है वही तो प्राप्त होगा। फिर मेरी समझ में ये सिंपल सी बात भी नहीं आई कि मर्यादा का जीवन क्या होता है, ये बात समझ में नहीं आ सकती। तो जो भी सूत्र महाराज जी ने दिए हैं वो याद रखिए, उसका बेसिस क्या, उसका जो है फाउंडेशन क्या है, उसका आधार क्या है, उसका आधार यही है कि तू इस लायक बन सके कि अंदर ईश्वर की याद प्रेम से करने में सफल हो जाए। सबका उद्देश्य ये है, जैसे कि हम बच्चे को काखा गा से पढ़ाते हैं और पीएचडी तक कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है हमारे सामने, एक ही उद्देश्य होता है, ये संसार में इस काबिल बन जाए कि ये बढ़िया पैसा कमा सके और खूब सुख आराम के साधन जो है इकट्ठे कर सके। बस एक ही लक्ष्य होता है माता पिता का संसार में। तो पढ़ाई हम कहां से शुरू करा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य पहले से निर्धारित। तो उसी प्रकार बात भले ही गुरु मर्यादा की कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए है ये मर्यादा, तब हम समझ पाएंगे कि मर्यादा क्या होती है, नहीं तो कभी जिंदगी में मर्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए महाराज जी ने पूरी डायरेक्शन तो देखें वो क्या दिए, उनने कहा सबसे लाइफ को सिंप्लीफाई करो, ताकि कम से कम वस्तुओं में, कम से कम पैसे में तुम्हारा गुजारा होना शुरू हो जाए। जब गुजरान वाला प्रोग्राम व्यतीत करोगे तो कमाई भी कम में गुजारा हो जाएगा, फिर आपको वहां से भी वक्त बचेगा आपका, तो काहे में लगेगा, जिंदगी का जो लक्ष्य लेके आए हो, जिस वास्ते ये मनुष्य जन्म मिला है, उस लक्ष्य में तुम समय दे सकोगे, फिर उसके बाद वो कहते हैं देखो कि अब तूने स्वार्थ भावना निकालनी है मन से। तो स्वार्थ भावना कैसे निकलेगी, जब दूसरे का स्वार्थ अर्थात दूसरे की तकलीफ में मदद करने वाले बनोगे, तब तेरी स्वार्थ भावना निकलेगी। तो इसलिए सेवा जरूरी है, अपनी स्वार्थ भावना को खत्म करने के लिए सेवा जरूरी है। संसार को सेवा की जरूरत नहीं, याद रखिए, ये मत भूल जाना कि संसार को बड़ी सेवा की जरूरत है। संसार का मालिक ईश्वर खुद है, वो जानता है संसार कैसे चलाया जाएगा। वो तेरी सेवा से संसार नहीं चल रहा, इसलिए ये कंफ्यूजन मत रखना कि बड़ी संसार को मेरी सेवा की जरूरत है। सतपुरुष सेवा तुमको इसलिए दे रहा है कि तेरे अंदर से स्वार्थ भावना निकालनी है उसने, इसलिए निष्काम सेवा की बात कर रहा है वो। सेवा करके कहीं ये मत भूल जाना कि मैंने सेवा की है, ये होश में रहना, ये सेवा प्रभु ने इस देह से करवाई है, क्योंकि इस देह का प्रारंभ उन्होंने दिया है। मेरे पास्ट कर्मों के अनुसार, मेरे स्वभाव के अनुसार इस देह की रचना हुई है और इस देह को प्रारब्ध दिया गया है। वो प्रारब्ध मैंने नहीं बनाया है, प्रभु ने निर्धारित किया है कि इस जन्म में किन कर्मों में देह इस्तेमाल होगी तेरी। इसीलिए कहा जाता है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। जब सकल जगत का कर्ता एक भगवान को जानो, वाणी कह रही है, तो मैं ये कैसे जान रहा हूं कि मैं सेवा कर रहा हूं? तो इसलिए जो सेवा बन जाए उसको करके फिर ईश्वर आज्ञा देखो कि प्रभु आपने ये करवाना था, करवा लिया, और उसका जो फल है उसमें भी ईश्वर इच्छा पूर्ण हुई, ये देखो कि प्रभु जो आपकी इच्छा थी वो फल रूप में पूर्ण हो गई। मेरा इन दोनों ना कर्म से कोई संबंध है ना उसके फल से कोई संबंध। अब बताइए, जब तेरे सारे संबंध टूट रहे हैं स्वार्थ से तो संबंध तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसको तो मर्यादा में कर दिया उन्होंने, नीड बेस्ड लाइफ कर दिया। और जो परमार्थ के कर्म कर रहा है, निष्काम भाव से सेवा भी कर रहा है, उसमें तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा हो गई। तो सारा संबंध तो गुरु तोड़ रहा है। इस सबकी सोच से संबंध जुड़ किससे रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईश्वर से तो जुड़ रहा है, और पर्पज ही है गुरु का। हर एक्टिविटी जो बता रहा है तुमको वो ईश्वर से जोड़ने के लिए बता रहा है। वहां से मेरी बुद्धि नहीं हटनी चाहिए। पूरी समतावलास पढ़ लो, जो कुछ भी महाराज जी ने लिखा है समतावलास पढ़कर आपका इस निर्णय में बुद्धि पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये ईश्वर प्राप्ति के वास्ते लिखा है। या दूसरी बात दिमाग में कोई आती है, चाहे वो विश्व शांति संदेश की बात महाराज जी लिखी हो, पढ़कर तो देखो विश्व शांति संदेश क्या लिखा हुआ है, पता लग जाएगा। ईश्वर के अलावा मसला ही कोई दूसरा नहीं। अरे जब प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, विचार करके देखो जरा, तो विश्व में शांति कहां से हो जाएगी? विश्व में शांति कहां से हो जाएगी? संभव है क्या? तो विश्व में शांति का मतलब एक ही है कि विश्व में जो देश भी जो व्यक्ति भी ईश्वर मार्ग का राही बन जाएगा, वहां शांति आनी शुरू हो जाएगी। और जो संसारी डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ेगा देश, उसके जीवन में अशांति बढ़ने लगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा उस देश के लिए कि वो मटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया यही। इसलिए गीता में सिद्धांत लिखा गया, रजसाह तू फलम दुखम, रजोगुण का जो परिणाम है वो दुख है। बन जाओ रजोगुणी, खूब कमाओ खूब कमाओ खूब भोगो, बड़े आदमी बन जाओ, तो या तो गीता को फेल कर दो या फेल। रजोगुण का परिणाम, जिसको हम सांसारिक विकास कहते हैं, इसका परिणाम दुख है। वो गहरे मानसिक क्लेश में फंसेगा वो व्यक्ति, बच नहीं सकता उससे। इसलिए जीने का रास्ता संसार में कोई बचा ही नहीं है, एक ही रास्ता है, वो ईश्वर का मार्ग। यदि तुझको चैन चाहिए, यदि तुझको जीवन की सफलता चाहिए, यदि तुझको वास्तविक आनंद चाहिए जो दुख में परिवर्तित नहीं हो सकता, वो आनंद केवल अंदर है, बाहर नहीं है। इसीलिए रामायण पढ़ लो चाहे महाजी की वाणी पढ़ लो, एक ही है, बुद्धिमान संसार में वह ही है जो ईश्वर का आश्रय लेकर ईश्वर के लिए जीता है और संसार में मर्यादा का जीवन व्यतीत करता है। मर्यादा का मतलब है कि सुखों का फैलाव संसार में प्राप्त करने की, वो सुखों का फैलाव या यूं कहिए भोगों का फैलाव जो संसार में करता है, उसकी बुद्धि ये होश में रहती है कि ये फैलाव दुखों में फंसा देगा। जिसके अंदर सद्बुद्धि है वो जानता है ये फैलाव दुखों में फंसा देगा। सादा व्यक्ति ही ईश्वर के मार्ग में चलने में सफल हो सकता है, क्योंकि उसको वस्तुओं की चिंता कम करनी पड़ेगी, स्वाभाविक है, उनके बारे में सोचना भी कम पड़ेगा, उनके लिए कमाई भी कम करनी पड़ेगी। तो हर मामले में उसका मन जो है, उसकी बुद्धि जो है, वो शास्त्र के स्वाध्याय में, सत्संग श्रवण में, सत्कर्म करने में, अंदर ईश्वर की याद करने में उसका वक्त खर्च हो। तो ये संस्कार जो सतोगुणी संस्कार है, ये मन के अंदर ये आपके अंकुरित होंगे। और सतोगुणी संस्कार जब मन में अंकुरित होंगे, तो मन की ये अवस्था हो जाती है कि हर वक्त अंतर्यामी की, प्रभु की याद नेचुरल आती है, क्योंकि मन के लिए सबसे प्रिय वस्तु ईश्वर बन जाती है, जो दिखाई नहीं पड़ता। देखिए जरा, मन आपको दिखाई पड़ता है क्या? लेकिन मन के अंदर जो संकल्प उठते हैं वो तो आपको दिखाई पड़ जाते हैं। दिखाई का मतलब है आप जान जाते हो। दिखाई पड़ने का मतलब यही नहीं होता कि आंख से दिखाई पड़ जाए। दिखाई पड़ने का मतलब है जो आप इंद्रियों से या बुद्धि से जान लो, वो सब दिखाई पड़ना है। तो मन के अंदर क्या उठ रहा है आप जान जाते हो, नहीं जान जाते हो? तो मन के अंदर जब प्रभु की याद उठ रही है, प्रभु का प्रेम उठ रहा है, तो आपको नहीं पता लगेगा। तो वो प्रेम हर दिन हर वर्ष बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो प्रेम खोता नहीं है फिर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उस प्रेम में तीन गुण नहीं है, ये सतगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों से ऊपर का प्रेम है। और उस वो प्रेम जब बढ़ता है तो संसार की बेचैनी घटती रहती है, क्योंकि ये आपके जो है जो तमोगुण रजोगुण है ये घटते रहते हैं आपके अंदर। तो जो कुछ भी शास्त्र में पढ़ा था, जो कुछ भी सत्संग में श्रवण किया था, जो कुछ भी गुरु के जीवन में देखा था, वो आपको अपने अंदर ही घटित होता प्रतीत होता है। तब शास्त्र पर पूर्ण विश्वास होता है कि जो लिखा है ठीक लिखा है। फिर संसार में कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई धमकी भी दे, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, निकाल दो भैया, मेरा मालिक तो ईश्वर है, बिना उसके हुक्म के तुम मुझे निकाल ही नहीं सकते, जानता है अंदर से। मेरा पालन करता ईश्वर है, वो जानता है अंदर से। इसलिए वाणी में आता है, बाल ना बीका कर सके चक्रवर्त भूपाल। चक्रवर्ती राजा भी ईश्वर भक्त का कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ईश्वर का हुक्म ना हो। इसलिए वो निश्चिंत होकर जीवन जीता है, लोगों की धमकियों से, घर वालों की धमकियों से नहीं डरता, उनकी अज्ञानता के आगे समर्पण नहीं कर देता। वो तो अज्ञानी है, तेरी बुद्धि में ज्ञान है तो तू उनके अंधेरे मार्ग को अपना लेगा, और गुरु जो मार्गदर्शन कर रहा है उसको छोड़ देगा तू? कहेगा मेरी बड़ी बड़े प्रिय बच्चे हैं, बड़ी प्रिय पत्नी है मुझको। तो ये अज्ञानता की बातें हैं। संसार में सबके लिए प्रिय अपनी आत्मा ही है, शास्त्र ये कहता है। संसार में सबके लिए प्रिय अपनी आत्मा ही है। इसीलिए हर मनुष्य का जीवन जब संकट में आता है तो एक ही इच्छा होती है, हे प्रभु मेरा जीवन बचाओ। संसार में जो भी हैं, अपने हैं या गैर हैं, मुझे किस तरह बचा लो। बस वो जीवन के लिए तड़पता है, वस्तुओं के सुख के लिए नहीं तड़पता वो। तो वहां आके पता लगता है सबसे कीमती वस्तु जीवन है, और वो जीवन जिसके हाथ में है उसका नाम है ईश्वर। वो तेरी देह के अंदर मौजूद है, तो कहां भटक रहा है? और वो जीवन कैसा है? वो आनंद रूप जीवन है। तो बताइए, गलत फहमी के कारण अज्ञानियों के साथ मैं पला हूं, अज्ञानियों के साथ पढ़ा हूं मैं, अज्ञानियों के साथ मैं संसारी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो मेरी बुद्धि अज्ञानी ही हो गई। उनके तौर तरीके मैंने सीख लिए, और गुरु का तौर तरीका सीखा ही नहीं मैंने। उस तरीके से मैं विश्लेषण करना सीखा ही नहीं मैंने। हर बात का विश्लेषण मैं संसारी तरीके से कर रहा हूं, जैसा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका भी तो ये मतलब हुआ कि मर्यादा का जीवन संसार में कैसे व्यतीत करूं, और संसारी तौर तरीके से मैं जानना चाहता हूं इस बात के लिए। इसका सांसारिक तौर तरीका कोई भी नहीं है, याद रखिए। इसका बेस अध्यात्म है, इसका बेस ईश्वर दर्शन है। उस तरीके से मैंने सोचना है। आपका निर्णय, आपकी बुद्धि आपका निर्णय खुद कर लेगी, आपकी बुद्धि खुद गाइड कर लेगी। समता विलास पढ़कर देख लो, और जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके देख लो, हर चीज आपकी समझ में आ जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ये सूत्र ना भूलें, ये उद्देश्य ना भूलें कि मानुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। इसलिए दुर्लभ मानव जन्म जब प्रभु के सिमरण के लिए मिला है, प्रभु दर्शन के लिए मिला है, तो मैं बेईमानियां संसार में कैसे कर सकता हूँ? लोग धोखा देते हैं, मैं किसी को धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं अपने वक्त को भोग विलास की वस्तुओं इकट्ठी करने में, उसके लिए पैसा कमाने में कैसे खर्च कर सकता हूँ? आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा, परिवार का पालन भी करूंगा, लेकिन संसारी तरीके से नहीं, जैसा शास्त्रों ने मार्गदर्शन किया है, जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया है। तो ये तप का रास्ता है, और तप का रास्ता संसार के दुख से आपको मुक्त करता है और ईश्वर के आनंद की ओर ले जाता है। इसलिए संसार में उसी प्रकार जीवन जिए जैसा कि शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।